Om Shanti. 22 जनवरी 1988। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। यह करना है, बनना है, क्लियर है, लेकिन आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने का मार्जिन नहीं है। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूं या रॉन्ग कर रहा हूं, यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। असंभव को संभव होगा। एक बल एक भरोसा, यदि इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर वन विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। जो सदा प्रसन्न रहते हैं वो प्रशंसा के पात्र हैं। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है, तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है। 1 बजे बेल घंटी बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं, कोई बेफिक्र रह सकता है? ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के, मैं निमित्त हूं, ऐसा निश्चय और निश्चिंत तो कौन रह सकता है? जो निश्चय बुद्धि हो, जो समर्पित बुद्धि हो और एक बल एक भरोसा हो। मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प और संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। तुम काम करते रहो और छम छम पैसे गिरेंगे। तुम 10 सेंटर खोलो, ग्राहक मैं भेज दूंगा। यह विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। इसको क्या कहते हैं? निश्चय बुद्धि। इसको कहते हैं समर्पण। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। इसको कहते हैं एक बल एक भरोसा। इसको कहते हैं प्रसन्न चित्त। फुल स्टॉप सीरीज चालू है। इसको कहते हैं फुल स्टॉप। किस बात को फुल स्टॉप? इसको कहते हैं परिस्थिति होते हुए कोई प्रश्न नहीं। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ। फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह भी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया, फिकर के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको की ही कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बेफिक्र बादशाह। वो जो हो गया वो दूसरा, वो छोड़कर फिकर से बोझ से भी बेफिक्र हो जाओ, इसको कहा जाता है डबल लाइट। इसको कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। 88 की मुरली है, 22 तारीख जनवरी मास। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप क्या रहे एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था, सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो और ही सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए तो और ही सहज है, क्योंकि अनेक आत्माएं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। यह करना है, बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है, सब देख रहे हो। लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी, क्या करना है, आगे क्या होगा, राइट कर रहा हूँ, रॉन्ग कर रहा हूँ, यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन असंभव को संभव बनाया। एक बल एक भरोसा इधि आधार से निश्चय बुद्धि नंबर वन विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा, बुद्धि कैसी रही, हल्की। बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट थे। तो प्रसन्न रहने वाले ही क्या बन जाते हैं आशीष भाई, प्रसन्न रहने वाले क्या बन जाते हैं, प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। 350 बच्चे, खाने के लिए आटा नहीं, टाइम पर बच्चों को खिलाना है, तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है। 1 बजे घंटी बेल बजनी है और 11 बजे तक आटा नहीं, सदा कौन बेफिक्र रह सकता है ऐसी हालत में भी, क्या अचित अचल। यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। तुम 10 सेंटर खोलो, ग्राहक मैं भेज दूंगा, तुम काम करो, पैसे मैं भेज दूंगा, छमछम करते आएंगे। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के, मैं निमित्त हूँ, ऐसा निश्चय। और निश्चिंत तो कौन रह सकता है, ऐसी निश्चिंतता कौन रह सकता है, जिसकी कोई अपना कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी किसी और की है, वो सोचे क्या करना है, मुझे क्या करना है। मन बुद्धि से समर्पित, अगर अपनी बुद्धि चलाते, क्या बुद्धि चलाते, क्या होगा, कैसे होगा, कौन लाएगा, कैसे लाएगा, कब लाएगा, ला क्यों नहीं रहा है, कौन खाएगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, अब किसी को कोई बीमार पड़ गया तो इनके माँ बाप क्या कहेंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये लोग क्या सोचेंगे, मेरी इमेज, मेरा प्रेस्टीज। ऐसे व्यर्थ संकल्प और संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी, यह विशेषता ही है समर्पणता की। रक्षक वो है, तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। क्या किया, हिम्मत रखी, पहला कदम, एक कदम इधर से और ये अरेबियन कहावत है वो, कि एक कदम तुम उठाओ तो 1000 कदम खुदा उठाएगा। निश्चय की विजय अवश्य होती है, फेथ। तो टाइम पर आटा भी आ गया और टाइम पर बेल भी बज गई, और भी क्या हो गया, पास हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले। क्वेश्चन मार्क कौन सा रास्ता है? टेढ़ा। सदा बिंदी, कल्याण की बिंदी लगाई, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह भी ब्रह्मा की क्या है? कमाल है। आज पहला एक कदम सुनाया, फिक्र से, बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। ये एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है ब्रह्मा बाबा के जीवन का। किस बात का? समर्पणता का। किस बात का? बेफिक्र रहने का। किस बात का? निश्चय का। किस बात का? स्नेह के रिटर्न का। कुछ भी नहीं है फिर भी प्रश्न नहीं और कल्याण की बिंदी लगाई। ये कब हो सकता है? जब इतना समर्पण भाव है, इतना सब कुछ स्वाहा कर दिया है, मेरा कुछ भी नहीं, जो भी है अब उसका है। ब्रह्मा बाबा जो थे वो वल्लभाचारी पंथ के थे। जैसा यहां उदाहरण है ब्रह्मा के जीवन का, सब कुछ धक से स्वाहा कर देना, वैसा ही एक उदाहरण वल्लभाचार्य के जीवन में है। और शायद हो सकता है एक संभावना, जो वल्लभाचार्य हुए वो शायद ब्रह्मा की ही आत्मा थी, वल्लभाचार्य। 1479 में वल्लभाचार्य का जन्म है, 1479। और उनके कई पूर्वजों को, बहुत पहले के पूर्वज को, किसी को स्वप्न आया था कि तुम जब सोम यज्ञ पूर्ण कर दोगे तुम्हारा परिवार, तो कृष्ण स्वप्न में आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगा, कृष्ण। तो दिखाया जब ये परिवार तो साउथ में है, बहुत सारे जन्म हो गए, बहुत सारा परिवार, पीढ़ियां गुजर गई, और एक पीढ़ी ऐसी आती है जब तक सोम यज्ञ 100 पूरे हो जाते हैं, और उसके पिताजी वल्लभाचार्य के साउथ से वेस्ट नॉर्थ में जाते हैं, उत्तर में वाराणसी, वहां पर वल्लभाचार्य का जन्म होता है। उसकी माँ को स्वप्न में आता है, बच्चा जन्म होता है, और उस समय भारत में मुस्लिम राज्य था, मुस्लिम आक्रांताओं का बहुत सारी यातनाएं भारतीयों को, हिंदुओं को पहुंचा रहे थे। उस समय वल्लभाचार्य का जन्म है, जबकि वो गर्भवती माता एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि आक्रांता आए हुए हैं। वहां पर 2 महीने पहले ही प्रीमैच्योर बर्थ, समय से पहले ही वल्लभाचार्य का जन्म है, और जन्मते ही स्टिल बर्थ, बच्चा रोया नहीं है, तो उसको एक झाड़ के पास रख देते हैं, मरा हुआ है, और वो निकलने लगते हैं, परंतु माँ को स्वप्न में कृष्ण आता है और कहता है मैं ही तुम्हारे घर में, मैंने ही जन्म लिया है। और वो माँ वहां पर जाकर देखती है तो कहते हैं कि वहां पर अग्नि प्रज्वलित होती है, चारों तरफ अग्नि का घेरा, और बीच में वो बच्चा रो रहा है। उसकी माँ उसमें प्रवेश करती है और बच्चे को लेती है। ऐसी वल्लभाचार्य की कहानी है, प्रिकॉशियस चाइल्ड, जो कल हम बात कर रहे थे इंडिगो चिल्ड्रन की। ऐसे बच्चे जो बहुत छोटी उम्र में बहुत ज्यादा टैलेंटेड, 7 साल की उम्र में सारे शास्त्र अध्ययन सब कुछ कर लिया, उसको बाल सरस्वती का टाइटल दिया गया था। 11 साल की उम्र में जब विजयनगर साम्राज्य था साउथ में, जो बाद में नष्ट हुआ, कृष्णदेव राय, वहां पर 27 दिन तक जो डिबेट चली उसमें वो बच्चा सबको हरा देता है, आचार्य और जगत गुरु का टाइटल। 100 मंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक बोलता है, और फिर नीचे से रिवर्स ऑर्डर में वापस ऐसी उसकी कुशाग्र बुद्धि। उनके जीवन में उन्होंने एक नया मार्ग चालू किया था, जहां पर वेदांत का था, शंकराचार्य का विशिष्ट अद्वैत था, रामानुजाचार्य का, और द्वैतवाद था माधवाचार्य का, निम्बार्काचार्य, ये सब हो गए थे तब तक। एक तरफ जैन संप्रदाय, दूसरी तरफ बौद्ध, ये सब का उसने अध्ययन किया। और फिर उसको जो साक्षात्कार हुए कृष्ण के, उसने एक अपना नया मार्ग, शुद्ध द्वैत मार्ग, अर्थात केवल और केवल कृष्ण की भक्ति, और वो भी नया मार्ग, पुष्टि मार्ग जिसको कहते थे पाथ ऑफ ग्रेस, ये एक नया मार्ग जिसमें केवल और केवल वो सब एक तरफ, कोई शास्त्र नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल कृष्ण प्रेम, उसकी लीलाएं, उसका प्यार, गोपियों का वो प्यार, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति का विस्तार जो चालू हुआ, वास्तव में वहां से चालू हुआ सारे भारत में अत्याधिक कृष्ण भक्ति, वो सब एक तरफ, वेद एक तरफ, उपनिषद एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, ये उसने चालू किया। वो तो ब्रह्मचारी रहना चाहता था, परंतु कहते विट्ठल महाराष्ट्र के उसके स्वप्न में आए और उसको कहा शादी करो, शादी की, और गृहस्थी में रहते हुए भी वो संन्यास के विरोध में था, और वो सब एसिटिटिज्म जो तपस्या वो सब करते हैं, वो सब न करते हुए गृहस्थ में रहते हुए कृष्ण की भक्ति करना है, ये मार्ग उसका था। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक इवेंट उनके जीवन में ऐसा है कि जब वो 52 साल के हो जाते हैं, तब उनको फिर से जैसे श्रीनाथ द्वारा के जो श्रीनाथ जी है वो आके कहते हैं कि अब संसार से वैराग ले लो, फर्स्ट कॉल, डिवाइन कॉल, ऐसा दूसरा कॉल और एक ऐसा तीसरा कॉल आता है जब वो समुद्र तट पर एक दिन बैठे रहते हैं, तो वहां पर कृष्ण का साक्षात्कार होता है और वो उनको कहते हैं कि बस अब संसार से वैराग। फर्स्ट जो डिवाइन विजन जो होता है, साक्षात्कार हुआ, उसके बाद में वैराग। भक्ति और ज्ञान जहां मिलता है, बीच में वैराग है। आज की मुरली में कहीं ना कहीं एक शब्द वाक्य है ऐसा, भक्ति और ज्ञान के बीच में जहां मिलता मिलन होता है, वहां बीच में वैराग है। तो वहां उसको वो सब बातों से वैराग आ जाता है और वो सब कुछ छोड़ देता है और काशी के पास जाता है, वहां अकेला रहता है और फिर जल समाधि। बाद में विदेश की एक ऑथर ने ब्रह्मा कुमारी इस पर किताब लिखी है, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, परंतु वो बहुत ही अलग प्रकार की किताब है, शायद यज्ञ में इस तरह की किताबें नहीं है। वो प्रोफेसर है, प्रोफेसर एमेरिटस किसी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने वो किताब लिखी है और काफी महंगी किताब है, जो यज्ञ में शायद नहीं मिलती, बाहर से किसी ने हमको दी थी। तो उस किताब में इस बात का जिक्र है कि वल्लभाचार्य के जीवन में जैसा हुआ वैसा ही ब्रह्मा के भी जीवन में हुआ है, जैसे उसको साक्षात्कार हुआ और एकदम से उसको बहुत जबरदस्त वैराग आ गया सभी बातों से, उसने सब कुछ स्वाहा कर दिया कृष्ण के चरणों में, सब कुछ समर्पण कर दिया उस साक्षात्कार के बाद, वैसा ही इधर भी साक्षात्कार है और उस साक्षात्कार के बाद सब कुछ स्वाहा कर दिया, कुछ भी फिर उसका नहीं रहा। फिर उसमें दिखाया है उसका धन, उसकी संपत्ति, उसकी पत्नी, उसके दो बच्चे वल्लभाचार्य के, सब कुछ स्वाहा, कुछ भी अब मेरा है, कुछ भी नहीं है, संपूर्ण समर्पण। हो सकता है वही वल्लभाचार्य की आत्मा वापस, जिसने कृष्ण भक्ति और जिसके माँ बाप को लगा वो कृष्ण ही है और कृष्ण ने कहा था कि मैं आ रहा हूं, वही कृष्ण की आत्मा शायद फिर से वो वही थी और वो ये भी है। बाबा ने कहीं कहा नहीं है, एक अनुमान मात्र। तो यहां एक उदाहरण दिया है एक अचल अवस्था का, ब्रह्मा के जीवन का, कौन सा, 350 बच्चे, खाना कुछ भी नहीं है, यदि हम कहीं पिकनिक पर चले जाए, ठीक है, हम लीडर है, टीम लीडर हम लोग गए थे ऐसा एक बार कि जिसमें सेकेंड MBBS में पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, तो वहां पे जो भी सारे पैसे थे एक बहन को दिए थे, एक जो हमारी क्लासमेट थी, और बीच में जाते जाते पता चला कि वो पैसे गुम हो गए तो कितना सबको टेंशन हो गया था, जो सबका अमाउंट जमा था वो कहीं गुम हो गए या रह गए। अगर हम सबको लेके कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम टीम लीडर हैं और हम ऐसे 100 लोगों को लेके कहीं गए घूमने के लिए, साइट सीइंग के लिए, ठीक है, और हमारे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ बीच में गड़बड़ हो जाए, तो हम निश्चिंत रहेंगे कि बाबा तो लेके गए, हम थोड़ी लेके गए इनको, बाबा देख लेगा आप, कि चिंता होगी, चिंता तो होगी, नेचुरल है। ये कैसी अवस्था है, ये सब जो आए हैं घर बार छोड़ कर आए हैं, और उनके घर वालों ने आके देख लिया तो क्या होगा, यहां क्या हो रहा है देखो, तो ये परीक्षा है। तो ऐसी हम 10 परीक्षाओं की चर्चा करेंगे ब्रह्मा बाबा के जीवन की। ये एक यहां दी है, परीक्षा कहो या ये कहो कि जिसमें अनिश्चितता की अवस्था है, आगे क्या होगा पता नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं, और उस समय में भी एकदम निश्चिंत रहना। सबसे पहला साक्षात्कार हुए 36-37 के आसपास, बिजनेस जो था इतना बड़ा उसको छोड़ दिया। कितना बड़ा डिसीजन है, इतना बड़ा लाखों का बिजनेस वो सारा के सारा छोड़ दिया। इसमें कितने प्रश्न आ सकते थे, जैसे कि क्या होगा, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, सबसे पहले थे मुझे कितना मिलेगा अगर मैं ये छोड़ दूं, तो मेरे परिवार का क्या होगा और जो आने वाले हैं उनका क्या होगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, दिमाग घूम गया, क्या हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, जादू टोना, क्या हो गया, पागल हो गया, क्या हो गया। सबसे पहले तो ये बात है, साक्षात्कार हुआ और उसके बाद में वो जो जॉब बिजनेस छोड़ने का डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन है संसार में, ये डिसीजन कुमार और कुमारिया ले ही नहीं पाते। लेने के बाद ये सोचा जाता है ब्रह्मा बाबा के जीवन में ऐसा कहीं है कि सोचते हुए बैठ रहे, पता नहीं शायद वो चालू रखते तो अच्छा होता और पैसे ज्यादा आते, क्योंकि कमाना तो चालू रहता है ना, मनुष्य का स्वभाव है कि जितने पैसे ज्यादा उतना अच्छा। एक भिखारी रहता है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि यदि मैं रॉकफेलर होता, रॉकफेलर उस समय बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो मैं रॉकफेलर से भी ज्यादा अमीर होता, अगर मैं रॉकफेलर होता तो, जैसे बिल गेट्स अभी है, पुराना मजाक है, ओल्ड जोक, तो उस जमाने में रॉकफेलर था, जैसे हेनरी फोर्ड और रॉकफेलर, तो वो कहता है कि अगर रॉकफेलर मैं होता तो मैं उससे भी ज्यादा अमीर होता। उसकी पत्नी कहती है कैसे, अगर तुम रॉकफेलर होते तो रॉकफेलर ही होते ना, उससे अमीर कैसे होते। तो वो कहता है मैं रॉकफेलर होता उतना तो पैसा मेरे पास होता ही, प्लस साथ साथ ये जो भिखारीपन से ये जो भीख मांग के जो पैसे मिलते वो भी तो होते एडिशनल एक्स्ट्रा, क्योंकि रॉकफेलर तो भीख मांगता नहीं, परंतु मैं तो दोनों चीजें करता, तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी रहता ना। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है। ब्रह्मा बाबा ये भी सोच सकते थे क्या, ये तो मैं करूंगा ये सब, पर ये भी चलने दो साथ साथ, इसको छोड़ने की क्या जरूरत है, ये भी चलेंगे तोड़ निभाना, ये भी चलेंगे वो भी चलाएंगे, ये भी चलने खर्चा भी चलता रहेगा, किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत लॉजिकल थिंकिंग है, तार्किक। कभी भी काम आ सकता है, परंतु क्या किया, वो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है समर्पण का, निश्चिंतता का, निश्चय बुद्धि का, ये सोचा ही नहीं फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये फर्स्ट है। पांच उदाहरण पाकिस्तान के, पांच उदाहरण भारत के, ये पहला। दूसरा, अपोजिशन। दूसरा अपोजिशन, एक अच्छा व्यक्ति है जिसका समाज में बहुत नाम है, अपने कंफर्ट जोन में है, उसको जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर फेंका जाता है तो कैसी अनिश्चिंतता हो जाती। अभी ले लो, अभी सारा ब्राह्मण परिवार हर एक अपने अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठा है। सोचो अपने डिपार्टमेंट से निकालकर किसी को दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए, ये इस कमरे में चेंज करके उधर चले जाओ, या अभी तुम यहां नहीं वहां चले जाओ, शांतिवन चले जाओ, या तुमको ये सेवा दी है जिसमें तुम्हारा बहुत नाम है और वहां से उठाकर कहीं और पटक दिया जाए, तो कैसा होता है। ऐसे बहुत कम आत्माएं ये सब होने के बाद भी निश्चिंत, शांत, अचल और अडोल। उदाहरण यहां है, बाहर से पता दिख रहा है कि इनको यहां से निकाल दिया, पर फिर भी अचल अडोल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर फेंकने के बाद भी निश्चिंत स्थिति, ये समर्पणता की अवस्था है। तो दूसरा एग्जाम्पल है अपोजिशन। किस किस से अपोजिशन? समाज। और किससे अपोजिशन? लौकिक संबंधियों से। तीसरा, समाज में आ गया बिजनेसमैन। एक समाज, एक लौकिक संबंध, एक समाज, दूसरी धार्मिक संस्था है जैसे आर्य समाज, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी विरोध हुआ है उस समय, जैसे कि उनसे भी थोड़ा थोड़ा विरोध, धार्मिक नेताएं उनसे भी विरोध, सब लोग विरोधी हो गए धीरे धीरे करते हुए। उस अवस्था में भी ये सोचना, एक तो ये होगा, हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग नाराज मत हो, नाराज मत हो, ठीक है, विड्रॉ कर लेना, एडजस्ट कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है ठीक है, पर यहां ये मेरा कार्य है ही नहीं, ये जो विरोध हुआ इतना सारा, कोर्ट केस, वारंट, पिकेटिंग, पेरेंट्स उनके लड़ने झगड़ने आ गए, ये कितनी बड़ी पेपर है एक व्यक्ति के लिए, कितना बड़ा पेपर है। जादू टोना, लेचरी एंड सॉर्सरी, ये दो शब्दों का प्रयोग न्यूज़पेपर में किया गया था। सॉर्सरी अर्थात जादू टोना करने वाला है, लेचरी अर्थात अत्यंत कामुक व्यक्ति, न्यूज़पेपर ने ये शब्दों का प्रयोग किया है। द मैन रिसोर्टेड टू लेचरी एंड सॉर्सरी, कामांधता, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है इंग्लिश न्यूज़पेपर में ब्रह्मा को डिस्क्राइब करने के लिए। ये व्यक्ति ये करता है, हिप्नोटिज्म करता है, मेस्मराइजेशन करता है, मेस्मरिज्म करता है, सम्मोहन करता है। एक व्यक्ति जिसका ना समाज में नाम और प्रतिष्ठा है और उसके विषय में बहुत सारे ऐसे शब्द, कुछ तो एक्सप्लेनेशन देगा वो, मैं ऐसा नहीं हूं, ये गलत छापा है, किसने छापा, कौन है वो, कौन से पत्रकार है, मुझे उनसे मिलना है, हम भी केस करेंगे मानहानि की। कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया। कैसी निश्चिंत अवस्था है ये, अपोजिशन, सभी ने अपोजिशन, जो दोस्त थे शत्रु बन गए, ये तो सबसे बड़ा दुख है, आघात है, दोस्त शत्रु बन जाना, साथी थे सब विरोध में चले जाना, आउटलॉ कर दिया था ओम, एंटी ओम कमिटी ने। एक लॉ है 1908 का, उस लॉ के तहत 1939 में लगभग शायद एक रिपोर्ट ऐसा भी है कि जिसमें इसको बैन कर दिया था, ऐसा कहा हुआ है, और फिर वो स्थानांतरण हुआ। तो ये दूसरी एक स्थिति थी कि जिसमें ब्रह्मा अचल रहा। तीसरा, नया ज्ञान, शास्त्रों के विरुद्ध का ज्ञान प्रचार करना। एक होता है थोड़ा सा उसको क्या करना, सुविधाजनक बना के प्रेजेंट करना, हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोगों का भी ठीक है, भक्ति भी अच्छा है, ये भी ठीक है, हमारा भी वही है, तुम्हारा भी वही है, ये नहीं, जो बोला है वो बोला है, मैं क्या करूं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, वो बोल रहा है उसको प्रेजेंटेबल बनाना, अच्छा डेकोरेट वगैरह करना, ब्यूटीफाई करना और फिर प्रेजेंट करना, ये है। पर जो है उसको वैसा ही प्रेजेंट किया, ये ऐसा है, ये कितना बड़ा चैलेंज है, ये कितनी बड़ी निश्चिंतता की अवस्था है, समर्पण है इसमें। नहीं तो बुद्धि मनुष्य अपनी चलाता है, ये दिया ये बता तो उसको थोड़ा लोग नाराज ना हो जाए, बस लोग रूठ ना जाए। नया ज्ञान, ये भी एक चैलेंज था। चौथा, सेलिबसी, ब्रह्मचर्य। चाहते तो ये बात तो कोई नई तो है नहीं, ब्रह्मचर्य की सदियों से चली आ रही है, पर उसको सीधा ही बोल देना, सबके लिए है उसको। अभी भी कहने से हम लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, डायरेक्ट कहते हैं क्या? ब्रह्मचर्य पर चर्चाएं होती है सेंटर या कहीं पर? बहुत कम। हाँ, अभी भी सोचते हैं वो, तब क्या सोचते होंगे फिर, जब कहीं नाम ही नहीं था। अभी तो टीवी और मीडिया ने इतना सब कुछ है, सोचते हाँ ये कुछ अच्छा कर रहे, तब तो कुछ भी नहीं था, एकदम नई कोई संस्था आ गई और वो अपना चालू कर रही है और उसका इतना विरोध भी हो रहा है, हिप्नोटिज्म, और रोज न्यूज़पेपर में नए नए सुर्खियों में नई नई बातें आ रही है, तो लोगों को डाउट तो लगता ही है ना, कौन ऐसा होगा कि भाई ये भी अच्छा होगा, सोचने वाला तो कोई होगा ही नहीं। लोग जो है, कलम जो होती है पत्रकार की, विश्व को हिलाती है, स्ट्रोक, उसका जो स्ट्रोक होता है ना ऑफ अ जर्नलिस्ट पेन, अ ड्रॉप ऑफ इंक मेक मिलियंस थिंक, वो जो लिख देता है लोगों को लगता है बस यही संपूर्ण सत्य है, संपूर्ण सत्य वचन है ये जो न्यूज़पेपर में आ जाता है वो गलत भी लिख दे तो बाद में चलो एक के ऊपर आरोप लगे, पूरा पेज भर आ गया, 10 दिन के बाद पता चले आरोप झूठे थे, चौथे पेज पर छोटा सा एक न्यूज, वो गलत था, सॉरी वो कौन पढ़ेगा। तो ब्रह्मचर्य, और पांचवा, कराची में तपस्या, 14 साल सबकी बैठ के पालना करना। कितनी निश्चिंतता चाहिए, समर्पणता चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा, हर दिन क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे इनको ट्रेनिंग दी, अच्छा लो पैसों का नहीं पर ट्रेनिंग कैसे दी जाए इनको, मुझे ट्रेनिंग देनी है, मैं दूंगा इनको ट्रेनिंग, मुझे ट्रेन करना है इनको, ये सब कुछ था ही नहीं, ये निश्चिंतता की अवस्था है। ये पांच उधर, पांच भारत में। पहला सेटल, पहला वो प्राकृतिक परिस्थितियां, नया स्थान, ठंड, सांप, बिच्छू, भालू, शेर, ये सारे इधर, भूत भी अपरिचित स्थान, अपरिचित लोग, कोई पहचान नहीं, कैसे करेंगे, कहां जाएंगे, कौन देखेगा, ये मौसम सूट होगा कि नहीं, पेट सबका ठीक रहेगा कि नहीं, स्वास्थ्य सबका ठीक रहेगा कि नहीं, किसी को कुछ हो गया तो यहाँ, पहले तो ये आदमी ये देखता है हॉस्पिटल है क्या, अच्छा कोई डॉक्टर विक्टर है कि नहीं, क्या हुआ तो कहाँ जाएंगे, ये कुछ सोचा देखा कुछ नहीं, ये एक निश्चिंतता का पेपर था, प्राकृतिक परिस्थितियां। दूसरा, यहां पर सेवा में अपोजिशन, हापुड़, और सेवाओं में लोगों ने क्या क्या किया, कितना विरोध किया उसमें, वो था पहला स्थापना के समय अपोजिशन, यहां आने के बाद था दूसरा सेवा में अपोजिशन। उस समय भी ये नहीं कि विड्रॉ कर लो, लोग बोल रहे हैं ये रामायण इज नॉवेल, इसको हटा दो चुपचाप और चलने दो सेंटर, नहीं वो वैसे ही रहने दो, सेंटर खाली करना है तो करो, तुम भेड़ बकरिया हो क्या जो डरते हो तो कितनी निश्चिंतता, कितना समर्पणता इसमें चाहिए कि यह भगवान का ज्ञान है और इसको वैसे ही देना है, एज इट इज, नॉलेज एज इट इज। ये दूसरा। तीसरा, बेगरी पाठ, जिसका ये उदाहरण दिया हुआ है। कितने भगंती हो गए, सोचो हम एक संस्था चालू करें और रोज एक 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 छोड़ के जा रहे हैं। एक नया कोई भी चालू कर दे, दल कोई एक 10 लोगों का, और दिख रहा है आज 9 लोग हैं, कल 8, फिर 5, फिर वो दिन भर में दिखते भी है घूमते हुए और कुछ बोलते भी नहीं। और बिना बोले, ऐसा भी नहीं कि नाराज हो, पहले तो ये बोलो ठीक है अभी मुझे काम है मैं नहीं हूं, ऐसा बोला तो ठीक है, पर बिना बोले। अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि खून से लिखने वाले चले गए, बोला नहीं क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है तुमको, कुछ चाहिए क्या, कुछ भी नहीं, जाना है जाओ, जैसे मेरा है ही नहीं। हरेक का भाग्य जहां तक था वहां तक भाग्य लिया, अब जाने का समय आ गया, यह निश्चिंत भाव था। जिसने जिसको जितना भाग्य लेना है उतना ही लेगा इसमें, जिसको जाने का टाइम होगा वो तुम कितना भी उसको, एक तो जबरदस्ती ला नहीं सकते और जबरदस्ती रोक भी नहीं सकते, दोनों चीजें हैं। चाहो किसी ने सोच लिया अब मुझे जाना है, वो जाके ही रहेगा, चाहे उसको कितना भी तुम तपस्या में बिठाओ, उसके साथ रोज मुरली डिस्कशन करो, ज्ञान योग करो, कुछ भी करो, जिसने निश्चय कर ही लिया है अटल कि मुझे जाना ही है, बिना शादी के तो कुछ नहीं हो सकता, उसको रोक सकते हो क्या? किसी की जबरदस्ती शादी की नहीं जा सकती, और किसी को शादी करना है तो उसको रोका भी नहीं जा सकता, ये दोनों भी चीजें हैं। जिसको करना है वो कितना भी उसको ब्रह्मचर्य के पाठ पढ़ाओ, सकाश दो पवित्रता के सुबह शाम, रिटर्न आएगी सकाश। जिसको करना है वो तो करके ही रहेगा, चाहे जो करना है करो, हाँ बाद में दूसरी बात है, पश्चाताप करेगा, रोएगा धोएगा, वो दूसरी बात है, उसके लिए भी तैयार है, पर करके तो रहेगा। बेगरी पार्ट। चौथा, हाँ कमाई करके आ जाएंगे, तुम वही मदद करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसको पहले पता था यहाँ से जाने वाला माया की नगरी में जाके यही रह के तो कितनी माया, वहां जाके वापस आएगा क्या कोई? चौथा, बड़ा परिवार लेके आएगा। हमारे उधर एक कुमार है, पहले कुमार था, एकदम पक्का कुमार, एकदम निश्चय बुद्धि कुमार, पूरा मतलब एकदम स्वाहा समर्पण। फिर बाद में विवाह किया तो अभी पूरा पत्नी और बच्चे सब सारे ज्ञान में, अभी भी संपूर्ण समर्पण, एकदम पावरफुल है, वो भी अनुभव है, ये भी अनुभव है, परिवार सहित ज्ञान में है पूरा, बच्चे भी ज्ञान में, युगल भी ज्ञान में। और वो भी कहते हैं बच्चे भी शिव बाबा के ही है, ठीक है। सब है। चौथा, बीमारी, शारीरिक बीमारी, बीमारी में आदमी हिल जाता है, बड़े बड़े योगी हिलते हुए देखे हमने, कितना भी कितना परंतु हिलता है जरूर, और वो क्योंकि हमें आत्मा अभिमानी बनना है तो देह अच्छा चाहिए। देह में अगर यहां दर्द हो रहा है, हमारे डॉक्टर थे एक, वो थोड़ा मजाक उड़ाते थे, ब्रह्मा कुमारी, उसका मजा भी आता था उनको थोड़ा। क्योंकि उनके सामने ये लोग करते ना, मुरली जाना है, दादी का क्लास है, ये है वो है, ऐसा है वो है, तो कहते थे आ करो, और वो डालते थे अब बोलो, अब बोलो, बाप की याद में हो क्या? करो अब याद। मुरली तो वो भी पढ़ के आ जाते थे ठीक, अभी अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की, किसी ने गुस्सा किया तो उसको ही सुना देते थे, आज तुम्हारे बाबा ने ऐसा कहा है मुरली में, देख लो। खुद करना नहीं करना वो थोड़ी पूछेगा उनसे, कोई आपने किया क्या, ब्राह्मण तो ऐसा नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो तो डिक्लेयर करते हैं कि मैं थोड़ी ना हूं, पर पढ़ के जरूर आते थे, किस लिए? सुनाने के लिए। ये भी एक कैटेगरी है। बीमारी में अच्छा लड़ोल रहना, सारी बीमारियां हुई उसमें अच्छा लड़ोल। एक तो खुद की बीमारी में हम अच्छा लड़ोल रह सकते हैं, पर जिससे प्रेम है उनको बीमारियां हो जाए तो उसमें व्यक्ति हिलता है, खुद की बीमारी और दूसरों की बीमारी। चौथा बीमारी और पांचवा मृत्यु। मृत्यु भी किसकी? सबसे पहला तो मम्मा का पलायन, इस संसार से जाना, उसमें भी अचल रहना। अब कौन देखेगा इनको? एक होता है ना, हम एक इंचार्ज है और हमने किसी को अपॉइंट किया और वो सारा कुछ एक रिस्पॉन्स एक डिपार्टमेंट उसको दे दिया, अचानक वो चला गया, अब उस डिपार्टमेंट को कौन देखेगा? ये प्रश्न आता है ना? या राइट हैंड अगर कोई है भाऊ, ये जो चले गए उसमें अचल डोल, उसमें निश्चिंत। और लास्ट मृत्यु में ही उनको खुद का भी पता था कि मैं जाने वाला हूं, तो नेचुरली ये रहेगा कि मेरे बाद कौन देखेगा, मेरे बाद क्या होगा, कौन संभालेगा, कौन देखेगा। ये एक प्रश्न हमेशा रहता है संसार में भी, मां को रहता है मैं अगर चली जाऊं तो बच्चे का क्या होगा, पति को रहता है मैं अगर चला जाऊं तो पत्नी और बच्चे का क्या होगा, घर का क्या होगा, इनका क्या होगा, यहां कुछ था क्या? निश्चिंत से संसार से विदाई, क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं। तो टोटल 10 बातें पाकिस्तान की और 10 बातें पांच बातें पाकिस्तान की और 5 बातें हिंदुस्तान की। और तो बहुत सारी हो सकती है, ये कुछ हमने ली है। ये उदाहरण जो बाबा ने दिया है निश्चिंतता का, पहला उनका बिजनेस, दूसरा समाज परिवार मित्र संबंधी, दूसरे धर्म और सरकार, सरकार की तरफ से भी विरोध, सरकार ने कोई बहुत सा सहयोग दिया ऐसा भी नहीं है, कोर्ट में तो बुलाया है ना, वो सब तो किया। तीसरा नया ज्ञान और उसको वैसे ही सुनाना। चौथा ब्रह्मचर्य पवित्रता का ज्ञान। पांचवा तपस्या कराई और उसका सस्टेनेंस उनकी पालना करना उसमें निश्चिंतता। ये उधर 5 भारत में 5। सबसे पहला नया स्थान प्राकृतिक परिस्थितियां, इसमें एडजस्ट होना सेटल होना सबको ले आना। 76 में फर्स्ट ये हुआ ना यहाँ पर इंदिरा गांधी ने, कौन सी जगह है पोखरान में, वो न्यूक्लियर मिसाइल न्यूक्लियर एटॉमिक टेस्टिंग, उसके बाद में आबू में गर्मी थोड़ी बढ़ी, उसके पहले बहुत ज्यादा ठंड थी, अभी तो कुछ भी नहीं। मतलब 76 से पहले बहुत भयंकर बाइटिंग कोल्ड, उसके बाद में थोड़ा सा उष्मा थोड़ी सी, कौन थे चिमन भाई, वो तो निश्चिंत है उनको पता नहीं होगा तो वो एक। फिर दूसरा बेगरी पार्ट, सेवा में विरोध अपोजिशन, दरवाजा बंद कर देना, ब्रह्मा कुमारी बांध, प्रोग्राम चल रहा है वो लोग खड़े हैं वहां पर आर्य समाज जी पर्चे बांट रहे, ब्रह्मा कुमारी पाखंड, अंदर प्रोग्राम चल रहा है बाहर पर्चे बांट रहे ब्रह्मा कुमारी पाखंड, लोग सुन के आते हैं थोड़ा बहुत आत्मा परमात्मा और तुरंत हाथ में ब्रह्मा कुमारी पाखंड, गया वो सुना हुआ इतना भयंकर विरोध। उसके बाद में बीमारी खुद की और सबकी, और लास्ट मृत्यु, देह वसान, मम्मा भाऊ और स्वयं आगे क्या होगा। ये सारी ही 10 परिस्थितियां ऐसी थी कि जिसमें साधारण व्यक्ति जो है हिल जाएगा, सोचने लगेगा, पूछेगा, कंसल्ट करेगा। दिखाया कई उदाहरण है, ब्रह्मा बाबा फोन करके पूछ रहे ऐसा हुआ क्या करूं, कोई को मित्र कोई गुरु, कोई 12 गुरु थे, भूतपूर्व गुरु भले थे पर मदद तो कर ही सकते थे क्योंकि बड़े थे यहां भी थे तो पूछ तो सकते हैं क्योंकि उम्र में बड़े हैं, क्या करना चाहिए बताओ भाई, ऐसी परिस्थिति है। किसी से पूछा? किसी से कुछ नहीं पूछा, निश्चिंत इतने थे अंदर से कि ये उसी का कार्य है, मैं क्यों चिंता करूं, जो यहां हम पढ़ रहे थे। संपूर्ण समर्पण था, इसे कहा जाता है ओम शांति।